ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। सरकार ने दो सालों की अवधि में भ्रष्टाचार नियंत्रण और लोकतंत्र के संस्थागत विकास में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। संचार मंत्री गोकुल प्रसाद बांसकोटा का कथन। 25वें जनयुद्ध दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। पेयजल मंत्रालय ने कहा आने वाले आषाढ़ महीने तक काठमांडू में मेलमची का पानी लाने के हिसाब से हो रहा है काम। और जापान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। अब समाचार विस्तार से। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बांसकोटा ने बताया कि वर्तमान सरकार ने दो वर्षों की अवधि में भ्रष्टाचार नियंत्रण, विधि के शासन की स्थापना और लोकतंत्र के संस्थागत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को सार्वजनिक करने के लिए संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री बांसकोटा ने बताया कि दो वर्षों के कार्यकाल में निवेश का वातावरण बना है। सड़क पुल आदि भौतिक पूर्वाधार के विकास में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही रेल तथा पानी जहाज संचालन में भी महत्वपूर्ण काम हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इन दो वर्षों की अवधि में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एक प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री बांसकोटा ने स्पष्ट किया कि यदि सीजी कम्युनिकेशन सरकार के साथ की गई शर्त और कानूनी प्रक्रिया को पूरा करती है तो उसे मोबाइल संचालन की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह मंत्री बांसकोटा ने बताया कि उपनिर्वाचन के क्रम में अछाम जिला के मेल लेख में हुई दंगों के घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार ही करेगी। आगे उन्होंने बताया कि नेपाल नागरिक उड्डयन संबंधी कानूनों के संशोधन और एकीकरण करने के विधेयक बनाने पर सैद्धांतिक सहमति करने, बाल बालिका संबंधी दूसरा संशोधन नियमावली 2076 को स्वीकृत करने, स्टैंडर्ड नाप और तौल आईन 2025 के संशोधन के लिए विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश करने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद ने किया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि जनयुद्ध की नकल करने मात्र से विद्रोह संभव नहीं है। नेकपा केंद्रीय कार्यालय धुम्बा रही 25वीं जनयुद्ध के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने स्पष्ट किया कि जनयुद्ध और विद्रोह एक ऐतिहासिक तथा विशेष परिस्थिति में जनता की आवश्यकता और नेतृत्व के सही विचार के आधार पर होने वाली एक विशेष प्रक्रिया है। साथ ही जनयुद्ध के सफल होने का मुख्य कारण सही विचार और नेतृत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि देश में समाजवाद की स्थापना के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को एक बार फिर से मेहनत करनी होगी। बता दें कि एमआलए और माओवादी के बीच हुए एकीकरण के पश्चात हर साल फागुन एक गते के दिन जन आंदोलन और जनयुद्ध के शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। पेयजल मंत्रालय ने कहा कि आगामी आषाढ़ महीने के अंदर काठमांडू घाटी में मेलमची का पानी लाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। आज काठमांडू में मेलमची पेयजल परियोजना का श्वेत पत्र जारी करते हुए पेयजल मंत्री बीना मगर ने कहा कि मेलमची पेयजल परियोजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मेलमची पेयजल विकास समिति द्वारा तैयार किए गए श्वेत पत्र में कहा गया है कि मेलमची पेयजल परियोजना का लगभग 95% काम हो चुका है। आज ही काठमांडू में आयोजित एक दूसरे कार्यक्रम में पेयजल मंत्री बीना मगर ने कहा कि चालू आर्थिक वर्ष के अंदर मेलमची का पानी काठमांडू घाटी में लाया जाए। साथ ही उन्होंने पानी वितरण के लिए आवश्यक तैयारी करने का काठमांडू घाटी पेयजल लिमिटेड को निर्देश किया है। प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की बैठक में समिति में प्राप्त शिकायतों को मद्देनजर करते हुए शिकायत सुनवाई कार्यदल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन 2076 पर विचार विमर्श किया गया। समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में सांसदों दिलेंद्र प्रसाद वडू, नवराज सिलवाल और रेखा शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में लगभग 50 से ज्यादा शिकायतों पर विचार विमर्श किया गया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
हजुर दर्शन।
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड के आज एक कार्यक्रम में दिए बयान पर नेपाली कांग्रेस ने आपत्तिजनक बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा द्वारा आज जारी एक बयान में पार्टी के पूर्व सभापति स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला से जुड़ी हुई अध्यक्ष प्रचंड की अभिव्यक्ति पर गंभीर ध्यानाकर्षण के उल्लेख के साथ इस आपत्ति जताई है। बयान में कहा गया है कि शांति के नायक स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला के जिम्मेदार और परिपक्व भूमिका को लेकर नेकपा अध्यक्ष प्रचंड द्वारा दी गई अभिव्यक्ति अराजनीतिक और आपत्तिजनक है। नेपाली सेना के इतिहास से वर्तमान तक शीर्षक की 3 दिवसीय वृहत प्रदर्शनी काठमांडू की भद्रकाली स्थित नेपाली सेना के जंगी अड्डा परिसर में शुरू हुई है। महाशिवरात्रि एवं सेना दिवस के अवसर पर नेपाली सेना द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का आज नेपाली सेना के बलाधिकृत रथी शरद कुमार गिरी ने उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में नेपाली सेना के गौरवपूर्ण इतिहास और वर्तमान से जुड़ी चीजें, तस्वीरें, हथियार, ऐतिहासिक उपकरण साथ ही जड़ी बूटी आदि दिखाए जाएंगे। बहुलता, प्रतिनिधित्व और विविधता के नारे के साथ विश्व रेडियो दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस साल विश्व रेडियो दिवस का नारा तय किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर सन 2012 से विश्व रेडियो दिवस मनाना शुरू हुआ था। विश्व में व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू हुए 94 साल पूरे हो चुके हैं। नेपाल में विक्रम संवत 2003 साल में ही नेपाली कांग्रेस की अगुवाई में रेडियो प्रसारण शुरू हो चुका था, जबकि औपचारिक रूप में रेडियो नेपाल के स्थापना होने के बाद विक्रम संवत 2007 साल चैत 20 को रेडियो संचालित हुआ था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान में बृहस्पतिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जापान में मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली एजेंसी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र जापान के उत्तरी मुख्य द्वीप होक्काइडो के उत्तर पूर्वी तट से दूर समुद्र की सतह से 60 किलोमीटर नीचे गहराई में स्थित था। भूकंप से फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। सरकार ने 2 सालों की अवधि में भ्रष्टाचार नियंत्रण और लोकतंत्र के संस्थागत विकास में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, संचार मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा का कथन। 25वें जनयुद्ध दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। पेयजल मंत्रालय ने कहा, आने वाले आषाढ़ महीने तक काठमांडू में मेलमची का पानी लाने के हिसाब से हो रहा है काम। और जापान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।